Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। मायर एमशेल एक यहूदी जवान था। एमशेल जब 11 साल का था तो उसके माँ बाप का निधन हो गया था। चूंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 20वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे मायर एमशेल की। वो अपने परिवार के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहता था। 18वीं सदी में फ्रैंकफर्ट में घरों के नंबर नहीं होते थे और घरों को दरवाजे पर लगे निशान से पहचाना जाता था। ये यहूदी परिवार रोथ्सचाइल्ड के नाम से जाना जाता था। उस जमाने में जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था और हर क्षेत्र में अलग शासन था। हर शासन की अपनी करेंसी थी और जो लोग इन क्षेत्रों की यात्रा पर जाते थे उन्हें करेंसी चेंज करनी होती थी। मायर इसी काम से होने वाली आमदनी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। वो यात्रियों की करेंसी को एक्सचेंज करता था और करेंसी की वैल्यू के डिफरेंस से लाभ हासिल करता था। मायर को पुराने और दुर्लभ सिक्के जमा करने का भी शौक था। धीरे धीरे उसके पास इतना बड़ा कलेक्शन हो गया कि उसकी शोहरत पूरे फ्रैंकफर्ट में हो गई और फ्रैंकफर्ट के राजा के बेटे के कानों तक भी ये बात जा पहुंची। प्रिंस विलियम्स को भी पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक था। उसने तुरंत मायर को संदेश भेजा और दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। मायर ने प्रिंस के कलेक्शन को पूरा करने में उसकी मदद की और उससे वादा किया कि जो दुर्लभ सिक्के उसे मिलेंगे वो उन्हें प्रिंस को दे देगा। इस तरह दोनों के बीच मजबूत दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। मायर जब 20 साल के हुए तो प्रिंस ने उन्हें शाही ब्रोकर के लकब से नवाजा। इस लकब के बाद मायर के व्यापार में 4 चांद लग गए। जब प्रिंस विलियम्स तख्त पर बैठा तो उसने मायर को पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारियां सौंप दी, जिसके बाद मायर की आमदनी भी बहुत बढ़ गई। 18वीं सदी के आखिर में जब यूरोप में लड़ाइयाँ भड़क उठी तो मायर ने सेनाओं के लिए रसद की आपूर्ति का काम शुरू किया, जिससे उसने खूब धन कमाया। 1795 में फ्रांसीसी सेना ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया। एम्स्टर्डम यूरोप का वित्तीय केंद्र था, लेकिन उसके बाद उसका महत्व खत्म हो गया और रोथ्सचाइल्ड फैमिली की वजह से फ्रैंकफर्ट ने उसकी जगह ले ली। इस स्थिति से किंग विलियम्स और मायर रोथ्सचाइल्ड ने जमकर लाभ कमाया। विलियम यूरोप के सबसे बड़े बैंकर बन गए और मायर की भी दौलत खूब बढ़ गई। इस दौरान मायर 5 बेटे के बाप बन चुके थे। उन्होंने अपने हर बेटे को यूरोप के एक अलग शहर में भेजा। नेथन को लंदन, जेम्स को पेरिस, कैरन को एम्स्टर्डम, एमशेल को फ्रैंकफर्ट और सोलोमन जहां बाप का आदेश होता था वहां जिम्मेदारी संभालता था। वे सभी मार्केट की स्थिति और वस्तुओं की कीमतों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे और शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। जब नेपोलियन ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया तो फ्रैंकफर्ट का किंग विलियम्स डर गया कि नेपोलियन किसी भी समय फ्रैंकफर्ट पर हमला कर सकता है और वहाँ उसकी संपत्ति महफूज नहीं है। इसलिए उसने अपनी दौलत ब्रिटेन स्थानांतरित कर दी, क्योंकि ब्रिटेन पर कब्जा करना नेपोलियन के लिए आसान नहीं था। मायर का बेटा नेथन वर्षों से लंदन में सक्रिय था, इसलिए उस पर भरोसा करना विलियम के लिए आसान था। ویلیم نے اپنی ساری دولت نیتھن کے ادھیکار میں دی دی۔ اس طرح یورپ کے سب سے امیر شخص کے روپ میں لندن میں نیتھن کا رتبہ کافی بڑھ گیا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی نجی سمپتی سے ویاپار جاری رکھا۔ دوسری اور نیپولین کی وجہ سے پورا یورپ یدھ کے مہانے پر کھڑا تھا۔ روتھ چائلڈ بردرز کو اس گھڑی کا انتظار تھا تاکہ وہ اس سے لابھ اٹھا کر ویلیم سے بھی زیادہ دولت جمع کر سکیں۔ مائر ہمیشہ اپنے بیٹوں سے کہتا تھا، اگر تم لوک پریے نہیں بن سکتے تو ایسا کچھ کرو کہ لوگ تم سے ڈریں۔ روتھ چائلڈ بردرز نے ایسا قدم اٹھایا کہ اس زمانے میں سب سے خونخوار راجہ بھی ان سے ڈرنے لگے۔ یورپ کے پانچ پوائنٹس پر پانچ بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور نیپولین کے یدھوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نیپولین نے یورپ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان لڑائیوں سے یورپ کے ایک حصے میں شیئر اور سونے کی قیمتوں میں گراوٹ آ جاتی تھی تو دوسرے حصے میں یہ اوپر چلی جاتی تھی۔ روتھ چائلڈ بردرز ایک دوسرے کو اس کی جانکاری دیتے تھے اور شیئر اور سونے کا سودا کر کے خوب کمائی کرتے تھے۔ نیپولین بریٹین کا رخ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انگریزوں نے ڈیوک آف ویلنگٹن کی کمان میں اپنے فوجی یدھ گرست یورپی کھیتر میں روانہ کر دیے۔ برٹش فوجی پرتگال میں اور فرانس کے پہاڑی علاقوں میں تعینات ہو گئے اور انہوں نے نیپولین کے خلاف یدھ کا وہیں اعلان کر دیا۔ نیپولین کی فوج نے سمندری مارگ بند کر دیا اور ان فوجیوں تک رسد پہنچنے سے روک دی۔ ویلنگٹن نے برٹش حکومت کو ایک پتر لکھا، میرے زخمی افسر کچھ پیسوں کے لیے اپنے کپڑے بیچنے پر مجبور ہیں، بنا پیسے کے ہم صرف 2 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں برٹش سرکار کے لیے سب سے اچھا راستہ اس نیٹ ورک سے لابھ اٹھانا تھا جو روتھ چائلڈ بردرز نے یورپ میں قائم کیا تھا۔ سرکاری پرتنیدھی نے لندن میں نیتھن روتھ چائلڈ سے ملاقات کی۔ سرکار کے انورودھ اور کافی بڑے پرستاؤ کو سننے کے بعد نیتھن نے ایک یوجنا بنائی۔ اس یوجنا میں سب سے مہتوپورن بھومکا ان کے بھائی جیمز روتھ چائلڈ کو نبھانی تھی جو پیرس میں تھا۔ جیمز نے فرانس کے وت منتری سے ملاقات کی اور انہیں یدھ میں انگلینڈ کو کمزور کرنے کے لیے اچھے انعام کے بدلے گپت روپ سے بڑی ماترا میں سونا فرانس استھانانترت کرنے کی پیشکش کی۔ فرانس اس پرستاؤ پر ترنت سہمت ہو گیا، کیونکہ انگلینڈ سے سونا نکال لینے سے اس دیش کی ارتھ ویوستھا کمزور ہو جائے گی اور کچھ سمے بعد وہ نشٹ ہو جائے گی۔ اس پرکار جو دھن جیمز تک پہنچتا تھا اسے فرانس سے ایک دوسرے مارگ سے برٹش سینکوں تک پہنچایا جانے لگا۔ اس طرح سے روتھ چائلڈ بردرز برٹش دھن، یا یوں کہیں کہ بھارتیہ دھن کو دشمن ملک کے کیندر پیرس کے راستے سے برٹش فوجیوں تک پہنچانے لگے۔ یہ استھانانترن فرانسیسیوں کی سرکشا میں انجام دیا جاتا تھا۔ یہ سکے وہی سکے تھے جو ورشوں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی دوارا بھارت سے لوٹ کر انگلینڈ بھیجے گئے تھے۔ روتھ چائلڈ نے 1812 سے 1814 تک 15 ملین پاؤنڈ ویلنگٹن تک پہنچائے۔ اس سے انہیں 1 ملین سکے ویتن کے روپ میں پراپت ہوئے۔ دشمنوں کے ساتھ نیپولین کی آخری جنگ دی بیٹل آف واٹر لو بہت جلد ختم ہو گئی۔ برٹش اور پروشین سینکوں نے نیپولین کی فوج کی رکشا دیوار توڑ دی اور فرانس کے سمراٹ نیپولین کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ واٹر لو میں روتھ چائلڈ کے جاسوس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر انگریزوں کی جیت کی خبر لکھ کر اسے کبوتر کے پیر میں باندھ دی اور کبوتر کو اڑا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی گئی اس خبر کا مولیہ 1,000,000 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ لندن میں نیتھن روتھ چائلڈ نے کبوتر کے پیر سے پتر کھولا اور اس پر لکھے کوڈز کو ڈیکوڈ کیا اور فوراً لندن شیئر مارکیٹ کا رخ کیا۔ شیئر مارکیٹ میں بہت سے شیئر دھارک گہری چنتا میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کو جنگ کے نتیجے کی خبر نہیں تھی۔ انہیں اس کی سوچنا کے لیے کم سے کم 1 دن اور انتظار کرنا پڑتا۔ जैसे ही नेथन ने मार्केट में प्रवेश किया, सभी की निगाहें उनकी तरफ उठ गईं। नेथन धीमे से उस स्तंभ की ओर बढ़ गए जिससे टेक लगाकर वो हमेशा बैठते थे। उन्होंने इशारे से अपने मुंशी को पास बुलाया और कहा कि उनके सारे शेयर बेच दिए जाएं। वहां मौजूद लोगों में बेचैनी फैल गई और वो एक दूसरे से कहने लगे कि नेथन को जंग के नतीजे की खबर हो गई है, जंग में जरूर ब्रिटेन की हार हुई होगी। ब्रिटेन की हार की खबर के अफवाह से शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया और शेयर तेजी से गिरने लगे। लंदन शेयर मार्केट में इससे पहले कभी शेयरों की कीमत इतनी नहीं गिरी थी। उसके फौरन बाद नेथन ने अपने मुंशी से कहा कि जितने ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो खरीद लो। इस तरह लंदन शेयर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा रोथचाइल्ड के नाम हो गया। एक दिन वेलिंगटन का संदेश लंदन पहुंचा और वो एक दिन बाद का समय था, तो ब्रिटेन की जीत की खबर हर तरफ फैल गई। इस खबर का शेयर मार्केट पर असर हुआ कि शेयरों की कीमत आसमान छूने लगी। इस तरह नेथन की दौलत एक दिन में कई गुना बढ़ गई। इस घटना में कबूतर की भूमिका अहम है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट उसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नेथन ने वेलिंगटन से कहा था कि जीत या हार की खबर फौरन लंदन नहीं भेजे, जो भी नतीजा निकले एक दिन के बाद लोगों तक पहुंचाए। रोथचाइल्ड ब्रदर्स और अन्य बड़े पूंजीपतियों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध बन गए थे। जब कोई युद्ध शुरू होता था तो बड़े बैंकर्स सरकारों को कर्ज दिया करते थे और बाद में अधिक ब्याज के साथ उनसे वापस लेते थे। सरकारें इसी पैसे से हथियार और ज़रूरी सामान खरीदती थीं। पिता की मौत के बाद रोथचाइल्ड परिवार की जिम्मेदारी अब नेथन के कंधों पर थी। वाटरलू लड़ाई के बाद अब ये परिवार यूरोप का सबसे अमीर परिवार बन चुका था। अब उसे किसी दूसरी लड़ाई का इंतज़ार था ताकि फिर से वो अपनी दौलत कई गुना बढ़ा सके। जर्मन शायर हाइनरिच ने इस संदर्भ में कहा था, हमारे ज़माने का खुदा पैसा और रोथचाइल्ड उसका दूत है। नेथन ने विभिन्न यूरोपीय सरकारों को कर्ज दिए और मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों के चयन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो यूरोपीय राजकुमारों और राजनेताओं से अकड़ कर मिलता था। एक राजकुमार के साथ नेथन की मुलाकात की चर्चा लंदन में खूब हुई। राजकुमार नेथन से मिलने पहुंचा। नेथन ने खड़े होकर उसका स्वागत नहीं किया और बैठे ही बैठे कहा, बैठ जाइए। उसके बाद वो फिर से कुछ लिखने में व्यस्त हो गया। राजकुमार को गुस्सा आ गया और उसने अपना और अपने परिवार का परिचय देना शुरू कर दिया। उसने नेथन को अपने देश की विशालता के बारे में बताया और युद्धों में अपने पिता के सम्मान और जीत का उल्लेख किया, लेकिन नेथन रोथचाइल्ड ने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, कृपया दो कुर्सियों में से किसी एक पर बैठ जाइए। प्रुशिया के वित्त मंत्री को भी रोथचाइल्ड परिवार से मुलाकात का कोई अच्छा अनुभव नहीं था। मंत्री एक समझौता तैयार करने के लिए नेथन के पास गए। जब मंत्री ने सौदेबाजी की तो नेथन को गुस्सा आ गया और कहा, प्रिय मित्र, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। जर्मनी में मेरा सारा धन आपके राजा को सौंप दिया गया। अब आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब नई बातें बीच में ना लाएं। जिस पर पहले हमने समझौता किया था उसी के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तुम्हारे राजा को रोथचाइल्ड का बहुत आभारी होना चाहिए जो उनके लिए इतना पैसा भेजता है।